ओम शांति, ओम शांति। अभी हमारा दूसरा सत्र शुरू होने जा रहा है और उसका टॉपिक है ब्राह्मण जीवन की सूक्ष्म धारणाएं। उस पर प्रकाश डालेंगी हमारी आदरणीय प्रिय गोपी बहन जी। आप लंदन से हैं, आपका भी एक वंडरफुल रोल है। अफ्रीका में आपका जन्म, पली बड़ी यूके भारत में, तो आप पूर्व और पश्चिम के दृष्टिकोणों का मिश्रण है। 1977 में आप अपनी संस्था के संपर्क में आई, बाल्यकाल से गहन ध्यान का अनुभव किया और तब से लेकर के आप अपने अध्ययन के, लौकिक अध्ययन के साथ साथ ईश्वरीय सेवाओं में भी बहुत रुचि रखती रही। आपकी बहुत सारी विशेषताएं हैं कि आप देश और विदेश के विभिन्न मंत्रालयों में, विद्या संस्थानों में, यूनिवर्सिटीज में संपर्क करना, वहाँ के लोगों की सेवाओं के कार्यक्रमों का आयोजन करना, ये आपकी रुचि है और जो धारणा मूर्त होकर के आप करती रहती हैं। और वर्तमान में भी आप हमारे हेडक्वार्टर की कुछ सेवाएं, विशेष करके पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा विभाग को निर्देशन कर रही हैं। गाँव की भी किस तरह से सेवाएं होनी चाहिए, बहुत सारे अपनी रचनात्मक बुद्धि को इस कार्य में लगा करके सेवाएं देती रहती। आपकी धारणाएं हैं और जो शिक्षाएं देगी, बोलेंगी, वो उनके चलन चेहरे में नजर आती हैं। आपने जयंती दीदी, जानकी दीदी की पालना ली है, तो उनकी पालना की ये प्रति मुहूर्त है। उनके हर एक्टिविटीज में दादी की और दीदी की धारणाएं झलकती हैं और खुद वो बहुत ही स्वीट एंड सॉफ्ट हैं। अब हम उनके ही शब्दों में सुनेंगे ब्राह्मण जीवन की सूक्ष्म धारणाएं। आदरणीय गोपी बहन जी,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पहली धारणा तो यही है, शांत रहना। वैसे तो ब्राह्मण जीवन की मुख्य धारणा है ही पवित्रता, लेकिन वो पवित्रता प्रकट तब होंगी जब बहुत डीप शांति में जाते हैं। शांति का अनुभव एक न्यारा अनुभव है। बहुत सारी बातें न्यूट्रलाइज हो जाती है साइलेंस में, और ये एक आदत बनी रहे, शांत रहने की आदत बनी रहे, ये एक फाउंडेशन धारणा है। अभी हम जैसे कर्म संबंध व्यवहार में आते हैं, आप सभी घर गृहस्थ संभालते हैं, हम लोग सेंटर में रहते हैं, लेकिन चलन चेहरे से एक शांति की वाइब्रेशन, ताकि आपकी कंपनी में औरों को राहत महसूस हो। पवित्रता की एक खूबी है, जैसे कोई झाड़ होता है ना, उसके पत्ते, उसके ब्रांचेस पूरा एक जैसे, क्या कहते हैं, छाया डालता है, जिसमें आपको बहुत ही ऐसे एक कूलनेस की फीलिंग आती है। अच्छा, हमको धूप से बाहर निकले, छाया में आ गए, अच्छा लगता है। तो वैसे ही आपकी धारणाओं से औरों को एक शीतलता महसूस हो, वो अपने विकारी कर्म बंधन से, वो जो विकारी के कर्म बंधन की खिंचाव होती है, टेंशन होता है, गरमाइश होती है, वो आपके वाइब्रेशन में आकर के उनको शीतलता शांति महसूस हो। ये बहुत जरूरी है। क्या है कि हम साधारण, बहुत साधारणता में आ गए हैं। हमको याद है दादी जानकी ने मार्च 27, 2020 में अपना, जब लॉकडाउन शुरू हुआ तब शरीर त्याग किया। उसके पहले 3-4 मास पहले दादी जी शांतिवन में थे और उस समय हम दादी के पास थे, दादी के बेडरूम में। तो मैंने बस ऐसे ही दादी को पूछा कि दादी आपको क्या दिखाई दे रहा है वर्तमान समय में। तो दादी थोड़ा साइलेंस में चले गए, फिर कहा कि हमारे दिन में, हम जब हमारे तपस्या के दिनों में हमको ऐसी फीलिंग आती थी कि हम कुछ खास है, बाबा भी हमको वो फीलिंग दिलाते थे, हम आपस में भी इतना रिस्पेक्ट से रहते थे कि एक विशेष आत्मा है, एक ईश्वर की चुनी हुई रतन, डायमंड है ये। बाबा भी हमको उस दृष्टि से देखता था तो हमको अंदर से एक खास फीलिंग आती थी। भल हम 14 साल कराची में तपस्या की, सवेरे उठ करके, 2 बजे उठ करके कपड़े धुलाई करो, खाना बर्तन मांजो, खाना बनाओ, वैसे तो कर्म साधारण थे लेकिन अवस्था श्रेष्ठ थी। उस खास पना की फीलिंग में हम रहते थे। देखो डायमंड, जब अपने आप को आप डायमंड समझते हैं तो चाहे डायमंड आप इधर रखो, ताज में रखो, अंगूठा में रखो, नेकलेस में डालो या पैर पे रखो, वैल्यू तो सेम है ना, वैल्यू कम नहीं होती है ना डायमंड की। तो हमारे कर्म हमको वैल्यू नहीं देता है, हमारी अवस्था हमको वैल्यू देती है। और हम साधारणता में क्यों आ गए हैं, क्योंकि हम कर्म के आधार से हम अपने आप को वैल्यूबल बनाना चाहते हैं। अच्छा कर्म करने वाले तो बहुत है, अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन जब वो सेवा का चांस नहीं मिलता है या कुछ नहीं, तो फिर अंदर अवस्था में क्या होता है। तो हम अपने कर्मों पे अधीन बहुत हो गए हैं सेल्फ वैल्यू के लिए। इसीलिए हलचल रहती है अवस्था में। अभी बाबा आए हैं पूरा इसका रिवर्स गियर करना कि बच्चे आप मेरे पूर्वज हीरो पाठधारी बच्चे हैं, आप इतने विशेष हो। अभी कोई व्यक्ति आपके सामने आकर के आपकी ऐसी स्तुति करे तो आप क्या करेंगे, मानेंगे उसको, मानेंगे? वैसे तो बाबा ऐसे स्तुति तो नहीं करते हैं, रियलिटी बताते हैं बच्चों को। 84 जन्म लेने वाली आत्मा एक बहुत पावरफुल आत्मा है। कितनी बारी शरीर छोड़ा, कितनी बारी शरीर धारण किया, हाँ, तो बकरी क्यों बने हैं? मैं क्या करूं, कैसे करूं, होता नहीं है, मुझे पता नहीं है, एक स्मृति की स्विच ऑन करनी होती है। तो ब्राह्मण जीवन की पहली धारणा है स्व परिवर्तन की धारणा, एवरी सिचुएशन में। ये संगम युग का धर्म ही है स्व परिवर्तन का धर्म। क्योंकि पवित्रता एक धारणा है, पवित्रता की धारणा के आधार पे हमको फिर धर्म सत्ता मिलती है आगे चल करके। और धर्म सत्ता माना परिवर्तन की सत्ता, पावर, ट्रांसफॉर्मेशन की पावर, खुद को परिवर्तन करना, औरों में परिवर्तन लाना। ये मूल बात हमने दादियों में बहुत देखी है। सभी दादियां तो मनुष्य आत्मा है ना, ह्यूमन बीइंग है ना, हर एक में अपना अपना स्वभाव संस्कार है, लेकिन उनकी जबरदस्त विशेषता थी स्व परिवर्तन की। और किस बात में स्व परिवर्तन लानी है? वृत्ति में परिवर्तन, दृष्टि में परिवर्तन, बोल में परिवर्तन। वृत्ति साफ बनी रहे, दृष्टि सतोगुनी रहे। मेहनत तो सारा यहां है और हम ऊपर ऊपर से काम चलाओ, बस किसी को खुश करने के लिए कुछ किया, अपने को खुश करने के लिए कुछ किया, लेकिन परिवर्तन तो हुआ नहीं। कुछ भी हो जाए, एक मंत्र पक्का करना है, मुझे बदलना है। कुछ भी हो जाए मुझे परिवर्तन होना है। चाहे सामने से वार हो, किसी कोई अटैक करे, असॉल्ट करे, जैसे आज बाबा की मुरली में भल मार खाओ, लेकिन ये भी एक विधि है ना बाबा को याद करने की, मार खाते रहो और ऐसे खुद के साथ समझो कि मेरा कर्म का हिसाब किताब चुप तो हो रहा है और मैं बाबा को याद कर रही हूं, थैंक यू बाबा। जब स्व परिवर्तन की शक्ति नहीं होती है ना, तभी हम छोटी बात को बड़ी बना देते हैं। कोई चीज को मर्ज करने की ताकत नहीं होती है। इसने ऐसे क्यों मेरे साथ व्यवहार किया, इसने मेरे साथ ऐसे क्यों बोला, क्या ये राइट है, ये राइट नहीं है, ये रॉन्ग, ये खुद अपना रोब दिखा रहे हैं इस समय, क्योंकि ये सब अभिमान की निशानी है, जिसमें वो शांति की शक्ति, शुद्धता है अंदर, वो पता है कई बातों को मर्ज कर देता है पेट में, ताकि उस आत्मा को कष्ट ना पहुंचे। ये पूर्वज आत्मा क्या है, मां क्या है, सब कुछ सहन कर लेती है ना, बच्चों का सहन कर लेती है ना, थोड़ी छोटी छोटी बातों में बात को बड़ा करके। तो विश्व की मां बनना है, परिवर्तन लाना है विश्व में, तो विश्व का मां बनना पड़ेगा। मैंने कई छोटी छोटी बातों को मर्ज करो। हमने तो दादी जी में देखा, खास करके दादी जी जहर पिया है उन्होंने, तो जो सामने वाला व्यक्ति होता है अपना दुख बाहर वॉमिट करता है, वैसे तो रबिश तो लेना नहीं है, लेकिन मर्ज किया है बहुत बातों को। मुझे याद है एक बारी एक बहन आई थी, हमारे विदेश में तो इतने हैंड्स नहीं होते हैं, जब दादी जी आए थे विदेश में तो ऐसे थोड़ी था, ऐसे बस एक बड़ा क्लास था, 10-12 लोग थे और वो भी हर रोज आने वाले नहीं थे, तो दादी ने खुद अपनी मेहनत से हैंड्स को तैयार किया है, एक एक को तैयार किया है। और दादी जी कई ऐसी गिनी चुनी माताएं थी जो बहुत ज्ञानी योगी माताएं थी, दादी उनको और देशों में भेजती थी वहां मदद करने के लिए, सेंटर जमाने के लिए, क्योंकि माताएं की ये विशेषता है प्यार देती है, भोजन करती है, तो वो फाउंडेशन बनता है सेंटर का। तो एक ऐसी एक माता थी, तो उनको 3 वीक के लिए कोई मिडिल ईस्ट की देश में भेजा गया था सेवा के लिए। जब वो वापस आई तो एक दिन क्लास के बाद उसने टाइम मांगा दादी से, और दादी को बोला, थोड़ी अपसेट थी, और बोला दादी को, दादी आपने मुझे ऐसे देश पे भेजा है कि कोई भी हैंड्स नहीं है वहां पे, मुझे इतनी 3 मास में दिक्कत हुई, अभी मुझे वहां वापस नहीं जाना है। ये तो मैं सार में बता रही हूं, कि बहुत थोड़ी लंबी चौड़ी कहानी थी उसकी। बहुत जैसे अंदर से जो भी तकलीफ हुई उसको वॉमिट आउट किया, ठीक है। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट डे दादी तो चुप होकर के सुनी बात, बोली, अरे बहन, दादी का कितना विश्वास है आप में, जैसे दादी ने हैंड्स तैयार किया है, दादी का यही विश्वास था आप में कि आप भी हैंड्स तैयार करेंगे। ऐसे थोड़ी रेडीमेड मिलते हैं फल के माफिक निकालो। फिर भी वो उस बहन को अंदर से पता नहीं कुछ हो रहा था, घर चली गई क्लास के बाद। फिर नेक्स्ट डे मुरली के बाद दादी बुलाती है, कहती है, वो कहाँ है, वो दिखाई नहीं दे रही है। तो मैंने देखा, क्लास में तो नहीं थी, मैं समझ गई कुछ हो, तो मैंने फोन किया, कहती मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है। हाँ, समझ गई क्यों ठीक नहीं है। तो फिर मैंने दादी को बताया कि दादी ऐसे बोल रहे हैं कि तबीयत ठीक नहीं है। तो पता है दादी ने क्या किया, दादी कहती है, ठीक है, हम 1 घंटे में कारोबार पूरा करते, तुम मुझे उसके घर लेके चलो। मैंने बोला, दादी घर जाने की क्या दरकार है, वो कल आएंगी क्लास में, आज थोड़ा ठीक नहीं, या फोन पे बात कर लो। नहीं, मुझे घर लेके चलो। बोला, क्यों दादी? कहती है, कल उसने जो दुख से बोला है, और उसको वो रियलाइजेशन हुआ कि मैंने दादी के सामने ऐसी बातें बोली है, दादी वो भी दुख इतना प्यार देना चाहती है कि वो भी दुख मिट जाए उसका, वो भूल जाए कि उसने कुछ दादी के सामने ऐसा कुछ बोला था। इतना रहम, ये एक निशानी है कि हमारा स्टॉक इतना ईश्वरीय स्नेह और प्यार से भरा हुआ हो कि हम औरों का दुख दूर कर सकते हैं, भल उन्होंने, उस व्यक्ति ने ही हमारे सामने गलत व्यवहार किया है, लेकिन इतना प्यार दे सकते हैं ताकि वो आत्मा उस मिस्टेक को भूल जाए। ये धारणा है ब्राह्मण जीवन की। बाबा हमारे साथ क्या करता है, हम जब बाबा के पास आते हैं कंप्लीट तमोप्रधान अवस्था में आते हैं, झूठे कंगाल कंप्लीट फुल तमोप्रधान अवस्था। बाबा थोड़ी कहता है, अरे तुम ऐसा है, तुम ऐसा है, तुम ऐसा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे थोड़ी कहता है बाबा। फिर भी बाबा प्यार से, रहम से, बाबा ज्ञान देते, बच्चे आगे बढ़ो, प्यार दे करके बच्चे आगे बढ़ो। फिर भी हम झूठ बोलते हैं बाबा को, फिर भी हम बाबा की बातें मानते नहीं हैं, लेकिन बाबा भोला है, उस समय भोलानाथ का रूप लेता है, क्योंकि उनका एक ही काम है, पेरेंट होकर के उनका एक काम है कि कुछ भी हालत में बच्चों को आगे बढ़ाना है हमको। तो उस समय ऐसे जब वापस आप बाबा के सामने आएंगे, आपने ना बाबा की श्रीमत पालन की है, झूठ बोला है, फिर भी बाबा आपके सामने भोलानाथ होकर के, बच्चे क्या है बताओ, दिल में क्या है, कोई बात नहीं, अभी आगे बढ़ो। तो हम किसकी रचना है, तो हमारा दिल भी ऐसा होना चाहिए ना। देखो प्योरिटी का सब्जेक्ट एक बहुत सूक्ष्म सब्जेक्ट है, उसमें फीलिंग्स की शुद्धता बहुत आवश्यक है कि मुझे अपनी फीलिंग्स को एक प्रेम भरी भावना बनी रहे, इसका ध्यान रखना है मुझे। कुछ भी हो जाए, कोई भी, ये व्यक्ति के ऊपर आधारित नहीं है, ये हमारा बाबा के साथ जो कनेक्शन है, जिससे हमको बाबा का स्नेह मिलता है, एक प्रेम महसूस होता है, प्रेम भरी भावनाएं प्रकट होती है दिल में, वो भावनाएं बनी रहे, ये है पवित्रता। तब आप फिर प्यार से किसी को समझानी दे सकते हैं, उसके मन और दिल में वो भावना परिवर्तन होंगी, जो बिल्कुल कठोर होते हैं ना, वो सॉफ्ट हो जाते हैं। लेकिन पूरी मेहनत है कि मेरी प्रेम भरी भावनाएं मैं बनी रखूं, ये मेहनत है हमारी। इसको साइड में रख करके फिर हम जस्टिस मांगते हैं, किस आधार से जस्टिस मांग, आपका अभिमान जस्टिस मांगता है, पता है ना, इंसाफ है। जो प्यारा बनता है वो सदा न्यारा रहता है। मैं आत्मा परमात्मा की संतान की स्मृति में रह करके उनके दिल में एक शुभ भावनाएं बनी रहती है सर्व के प्रति, कुछ भी हो जाए। दादी क्या कहती थी कईयों को, मैं तुमको शुभ भावना से मार डालूंगी, इतनी ताकत है आप में। आपको पता है विदेश में ऐसे थोड़ी है लोग जो सब हाँ जी बोलने वाले हैं, वो तो जब तक उनकी बात दिमाग में कोई बात फिट नहीं हुई, समझ में नहीं आई, तो हाँ नहीं बोलते हैं। वो करना नहीं चाहेंगे या कर नहीं सकते तो सीधा ना बोल देंगे। और आपने थोड़ा सा भी आपके कर्म बोल भावनाएं में फर्क, तो तुरंत पॉइंट आउट करेंगे, आप ये बोल रहे थे, देखो कर्म कैसे कर रहे हैं आप। हाँ सीधा बोलेंगे, मुंह पे बोलेंगे, वो लोग रिजेक्ट भी करेंगे, अपोज भी करेंगे, सच्चे दिल वाले हैं, लेकिन कभी कभी सहन शक्ति नहीं है। तो बहुत सारे कल्चर वालों के साथ दादी ने व्यवहार किया और हमने देखा। एक भाई था हमारा, वहां का ही सीनियर भाई है, तो ये 30 साल पहले की बात है शायद, तो ये जर्नलिस्ट भाई है। तो हमने एक दादी के लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑक्सफोर्ड में अरेंज किया था, और इनका जो टाउन हॉल होता है, जो शहर के सिटी में एक टाउन हॉल होता है, बहुत पुराना है बिल्डिंग, लेकिन बहुत शानदार है। तो हमने दादी के साथ एक वीआईपी को बिठाया था जो हमारे संपर्क में था, और ये भाई जर्नलिस्ट भाई दोनों का इंटरव्यू करने वाला था। तो उसने थोड़ा टाइम मांगा था दादी से कि मैं थोड़ा दादी प्रश्नों की बताता हूँ कि कौन सा प्रश्न मैं पूछूंगा आपको। तो जब बैठा दादी के पास तो सारे प्रश्न दिखाए दादी को, फिर उसने बताया दादी को, दादी ये ऑक्सफोर्ड है, यहाँ पे सब बहुत साइंस में मानते हैं, आप है ना भगवान की बातें नहीं करना। अभी जिस व्यक्ति में बाबा का रग बैठा हुआ है उसको बोले कि आप भगवान की बातें ना करो, कैसे हो सकता है। फिर भी दादी शांति से सुना, है ना। फिर क्या हुआ, इंटरव्यू शुरू हुआ, प्रोग्राम हुआ, 500-600 लोग जितने पहुंच गए थे, और जैसे इसने इंटरव्यू शुरू किया 10 मिनट के अंदर दादी ने बाबा बाबा शुरू कर दिया। ठीक है, ईश्वर की शक्ति कैसे प्राप्त करे, वो सब बातें। और ये भाई थोड़ा डाइवर्जन की कोशिश करना चाहते हैं। हाँ, लेकिन ये ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल में हमको क्या करना चाहिए? फिर भी दादी बाबा बाबा करती रहे, ठीक है। वो फिर क्या हुआ, 20 मिनट के बाद वो भाई नाराज हो गया और अपने प्रश्न को टेबल पे ऐसे फेंक दिया। अभी हमको दिखाई दे रहा है कि नाराज हो रहा है, ये जो वीआईपी भी बैठा था उसको भी दिखाई दे रहा था, तो उसने तुरंत दादी को प्रश्न पूछा ताकि ऑडियंस सारा डिस्ट्रैक्ट हो जाए, और ये भाई बिल्कुल चुप रहा पूरा प्रोग्राम में, कुछ और बातें नहीं किया। और फिर दोनों का वार्तालाप शुरू हुआ, जो वीआईपी था और दादी का था। प्रोग्राम तो बहुत अच्छा गया, लेकिन ये बिल्कुल रूट गया था पब्लिक में, ठीक है। क्या हुआ, सभी बैठे रहे अंत तक और सभी आए आगे, टोली दृष्टि लेने के लिए सभी आ गए थे। फिर जब दादी टीम के साथ बैठी जिन्होंने पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, तो ये भाई ने बोला, मुझे बिल्कुल लगा कि पूरा प्रोग्राम फेल हुआ। दादी ने बोला, अरे भाई आप निमित्त थे, आप ऐसे सोचेंगे तो जो इनको फायदा मिला है प्रोग्राम से वो कैसे रखेंगे अपने आप? आप निमित्त हो, आप ऐसी भावनाएं रखो कि जो इनको कल्याण मिला है प्रोग्राम से, फायदा मिला है, वो आपकी शुभ भावनाएं वो बनी रहे जीवन में। आप ऐसे सोचेंगे तो इनका हाल क्या होगा? तो फिर दादी ऐसे शब्द बोल करके वापस लंदन चली गई और ये भाई आकर के ऑक्सफोर्ड में रह गया। लेकिन उसको रात भर नींद नहीं आई, वो चुपता रहा ना, बात मेरे प्रश्नों का ठीक जवाब नहीं आया, दादी ने बाबा बाबा क्यों शो, मेरी बात ही नहीं मानती है दादी, ऐसे ऐसे चुपता रहा। क्या हुआ, फिर नेक्स्ट डे 3 बजे उठ करके सीधा गाड़ी में जाकर के लंदन पहुंचा, 1 घंटे की ड्राइव होती है। 4 बजे अमृतवेले के लिए पहुंचा, क्योंकि दादी जी 4 बजे अमृतवेले कंडक्ट करती है। तो अमृतवेले के बाद दादी लिफ्ट में ऊपर गई अपने कमरे में, तो वो भाई सीढ़ी से ऊपर पहुंच गया, और जैसे लिफ्ट के दरवाजा खुला और दादी बाहर निकली, अरे तुम यहां हो? हाँ दादी, मैं आ गया हूं, मुझे बहुत दिल में दर्द हो रहा है, जो कल रात का प्रोग्राम में जो हुआ मुझे इसका बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि किसी ने मुझे दिल में चाकू लगा दिया है। कितना ड्रामेटिक, दादी ने ऐसे उसको दृष्टि दिया, अच्छा चाकू लगाया तो निकाल दो। वंडर की बात ये थी, वो ऐसा जवाब दिया दादी ने कि वो भाई 1 सेकंड में पलटी और हंसने लगा, मैं निकाल दूं? और निकाल दूं क्या बड़ी बात है, तुम क्यों अपने आप को इतना कष्ट कर रहे हो, क्यों अपने आप को इतना दुख दे रहा है? और उसको उस समय इतना रियलाइजेशन हुआ कि मैंने इतने व्यर्थ संकल्प रचे हैं, क्योंकि मैं जो चाहता था वैसा नहीं हुआ, मैंने खुद अपने दिल में चाकू लगाया। तब दादी ने वो शब्द उच्चारे कि तुम कैसा भी हो, मैं अपनी शुभ भावना से तुमको मार डालूंगी। माना क्या होता है, हमारी अंदर की क्या कहेंगे, अहम भाव, वहम भाव, मोह की भावना, इसे हम खुद को परेशान करते हैं ना, और फिर वो परेशानी हम औरों के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, तेरे वजह से मैं परेशान हूं। रियलिटी क्या है, मैं सिंपल उदाहरण देती हूं, आप सभी कंफर्टेबल बैठे हैं ना अपने इस जगह पे, ठीक है, सोफा पे बैठे हैं या सीट पे बैठे हैं, अभी आप ब्रेक लेंगे और बाहर जाएंगे कॉफी पीने, चाय पीने या बाथरूम जाने के लिए, तो वापस कहां आएंगे, कहां आएंगे आप वापस? अच्छा मेरी जगह पे, अच्छा 1 घंटे के लिए बैठे और मेरी जगह हो गई इतना जल्दी, और फिर कोई और बैठा हुआ होगा वहां पे, तो फिर क्या विचार चलेगा, ये मेरी जगह पे कौन बैठा है? अभी आप इसका बीज देखो ना, ये आपने सीट खरीद दी है ना, आपने बनाई है लेकिन आप बस 20 मिनट 30 मिनट बैठ करके मैंने मेरी बना दी है सीट। अभी मेरी सीट में किसकी हिम्मत है बैठने की? ये कितना धोखेबाजी में हम जी रहे हैं, ये कितनी एक आदत बनी पड़ी है पता है, देहभान में आकर के हर चीज मेरा ये मेरा ये, मेरी सेवा में क्या मेरा है। इसीलिए तो हमारी फीलिंग्स में अपवित्रता अशुद्ध बनते हैं ना। आपने खुद कुछ चीज जो आपकी वास्तविकता में है नहीं, आपने उसको अपना बना दिया है, फिर जब कोई और वहां बैठता है तब आपकी मोह वजह से ही आप परेशान हो रहे कि मेरी सीट पे कौन बैठा है, हालांकि आपकी थी नहीं। तो जिसमें एक मैंपन मेरेपन से छूटता है उसका स्वभाव बहुत सरल बनता है, इजी नेचर। नहीं आप भल बैठो ना, बैठो बैठो आगे बैठो, इसको भी बैठाएंगे ना, आपको भी चांस मिले ना। बाबा ने बच्चों को आगे रख करके, ऐसे नहीं बाबा खुद अपने आप को आगे रखा, बाबा ने बच्चों को आगे रख करके बड़े हैं। तो ये जो सारी आदतें हैं ना अंदर की, जो बिल्कुल हार्डवायर्ड हो गई है हमारे ब्रेन में स्वभाव में, इन बातों को हम देखते नहीं है। और दादियों ने, मैं आपको बताओ, कुछ नहीं है उनको, ये एक एकदम जड़ में रियलाइजेशन है कि मेरा कुछ है ही नहीं, ना मेरा सेंटर है, ना मेरा घर है, ना मेरी गाड़ी है, ना मेरा कुछ नहीं है। एक्चुअली रियलिटी क्या है? आप बोलते हो ये मेरा घर है, ठीक है, आपने अपना घर बनाया है क्या खुद अपने हाथों से? ठीक है, आपने अपने हाथों से भी बनाया होता तो भी आपने ईंट अपने हाथों से बनाई है, लकड़ी अपने हाथों से बनाई है, ये प्रकृति है, ये नेचर की मानत है जो आप मेरेपन कह रहे हैं। ये बिल्कुल इसका पहले ब्रेकडाउन चाहिए, मेरा कुछ भी नहीं है, तब जाकर के स्व परिवर्तन की शक्ति आती है। ना मेरा सोच विचार, ना मेरा ये, ना मेरे गुण का अभिमान होता है। ज्ञान किसने दिया है? बाबा ने, उसके आधार से गुणवान बने हैं, और फिर मेरी भी विशेषता है क्या? कमाल है, कितना खुद को धोखा देते हैं। तो अंदर फीलिंग्स को क्लीन रखना, पवित्र रखना, शुद्ध रखना, और वो शुभ भावना में रहना, मैं मेरे से जड़ से छूटना चाहिए। क्योंकि परिवर्तन तो इन दोनों बात की है ना। अभी आप देखो दूसरी बात, दुख लेते हैं हम, क्यों दुख लेते हैं हम? बाबा ने तो साफ बताया है, दुख देना नहीं है लेकिन दुख लेना भी नहीं है। मुझे याद है एक सेवा के फील्ड में, चलो भिन्न भिन्न प्रकार के विचार आते हैं, आइडियाज आते हैं, ओपिनियंस आते हैं, तालमेल करके आगे बढ़ना कम बात नहीं होती है, सहन कुछ करना होता है। लेकिन मैंने एक बात नोट की एक संबंध किसी के कनेक्शन में, वो व्यक्ति मीटिंग में बैठा था, अपना रोब दिखा रहा था कि मैं जो बोलूं वो राइट है मेरा सोच विचार राइट है, मेरा बस ऐसा ही हल्का सा संकल्प चला कि ये देखो ना अपना रोब क्यों दिखा रहा है, बस इतना ही संकल्प चला मेरा। और फिर जब मेरी बारी आई मेरा विचार देने का, उसने बिल्कुल
स्वीकार ही नहीं किया, रिजेक्ट किया, तभी मुझे दुख लगा। लेकिन मैंने जब साक्षी होकर के खुद को देखा ना, मैंने सोचा गोपी तुमने इसमें दुख क्यों लिया, क्योंकि उसका बीज था कि तुमने 2 सेकंड पहले इस व्यक्ति के लिए जजमेंट किया, तेरे जजमेंट के कारण तूने उसका दुख लिया। अंदर कुछ है नहीं तो दुख किस हिसाब से लेंगे आप, समझ आई बात? तो जिसमें वो स्व परिवर्तन की रुचि है वो सदा एक आंख अंदर रहती है, अपनी अवस्था पे रहती है, कौन से संकल्प में रच रही हूं अभी इस वर्तमान समय में, क्योंकि वो संकल्प से मैं एक एनर्जी की ब्रिज बना रही हूं वो आत्मा के साथ, तब जाकर के दुख का लेन देन शुरू होता है। आपने किसी के प्रति अशुभ संकल्प किया ही नहीं है तो उससे कैसे दुख लेंगे, कैसे दुख लेंगे, कुछ कनेक्शन है ही नहीं ना। तो बहुत डीप चेकिंग चाहिए। स्व परिवर्तन का फाउंडेशन ही है चेक एंड चेंज। हर बात में बहुत सूक्ष्म चेकिंग चाहिए कि मैंने कौन सा दरवाजा खोला है मन में, जिसके कारण मैं इसके स्वभाव के वश हो गई। इसीलिए बाबा साक्षी दृष्टा का अवस्था पे बहुत जोर देता है, कर्म में आओ साक्षी होकर के आओ, तब जाकर के ईश्वर के गुणों का रस वो कर्म में बैठेगा, उसको ही हम धारणा कहेंगे, ईश्वर के गुणों का रस। प्यार कौन देने वाला है, बाबा। शांति कौन देने वाला है, बाबा। सुख कौन देने वाला है, बाबा। ये पूरा वर्षा बाबा से ही मिलता है ना। तो जब हम उस प्यार और कनेक्शन निरंतर रहता है ना, और हम फील्ड में आकर के साक्षी रहते हैं, तभी वो वाइब्रेशन काम करेंगे। समझ आई बात? हम क्या करते, साधारण होकर के बस अपने स्वभाव संस्कार के आधार से बोलचाल फेमिलियरिटी में आते हैं, बस अपना अभिमान, अपने लाइफ का एक्सपीरियंस, क्या है ये? करण करावनहार बाबा है, आपके पास तो पाई पैसे का ज्ञान है, रियलिटी तो ये है। तो बुद्धि को तो चुप रखो ना थोड़े समय के लिए, बाबा को याद करके बाबा को तो पूछो ना। तो ये दूसरी धारणा जो होती है ब्राह्मण जीवन में, नम्रता की धारणा होती है। एक नम्रता की धारणा के फाउंडेशन है सीखने की भावना। हर बात में एक सीखने की भावना, मुझे इस व्यक्ति से क्या सीखने को मिलेगा, उसे कौन सा गुण में चोरी कर सकती, उससे बाबा ने इसको क्यों चुना है। ये जब सीखने की भावना रहती है ना, अभिमान बहुत दूर रहता है, तब आप ईश्वर के गुण को ग्रहण कर सकते हैं। ज्ञानी तो आत्मा ऐसे नहीं कि तोते माफिक बोलते रहो, बस ये समझ में आए, बस ये बाबा का ज्ञान है, ये दुनिया का ज्ञान है, उसका कंपैरिजन करे, ये तो मोटापना है बुद्धि का। लेकिन जिसमें बुद्धि की ह्यूमिलिटी है उसमें बहुत सीखने की भावना है। हमने देखा ना, दादी बच्चों के साथ जैसे बच्चा बन जाती थी, टीचर के साथ समान वाला फ्रेंड बन जाती थी। ऐसे नहीं कि मैं कोई बड़ी दादी हूं, मेरे पास इतने सालों का अनुभव है, हम इतने छोटे दादी के सामने, फिर भी इतना रिस्पेक्ट से प्यार से दादी बुलाती थी, हमारे विचार लेती थी दादी, ऐसे नहीं मुझे सब कुछ पता है तुमको कुछ नहीं पता है, ये रोब है। जो व्यक्ति रूहानी रुहाब में नहीं रहता है वो रोब दिखाता है, और ब्राह्मण जीवन की एक निशानी है रूहानी रुहाब में रहना। मैं किसकी संतान हूं, ये किसकी संतान है, एक रिस्पेक्ट बनी रहे, स्वमान में रहना, सम्मान देना। जब रोब दिखाते हैं तो मान के भूखी बनते हैं, मान दो मुझे, रिस्पेक्ट दो मुझे। ये क्या है, इसको धारणा नहीं कहेंगे। तो एक रहम दिल अंदर से, एक रूहानी नशा रहे, ये धारणाओं में होनी चाहिए, ये साइंस है। और एक बात और है कि हमारी धारणा स्थिर रहे, कुछ भी हो जाए हलचल में नहीं आना है। स्थिरता की बहुत आवश्यकता है ब्राह्मण जीवन में। आपने कुछ बात का निर्णय कर लिया है, ठीक है, तो जब आपने उस बात में निर्णय कर लिया है तो फिर आपको उस अनुसार कर्म करना है ना, ये आपका काम है ना। अभी आप डावाडोल हो जाएंगे, हलचल में आएंगे, फिर संशय उठाएंगे, क्या मैंने वो राइट डिसीजन लिया है क्या। राइट डिसीजन कोई होता नहीं है, राइट अवस्था होती है जब डिसीजन लेते हैं। और जब हम उस राइट अवस्था में रहते हैं तब हमारा एक एक डिसीजन में सफलता आती है। तो अवस्था को स्थिर रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो स्थिरता के लिए हमको कई बातों का एक व्रत रखना पड़ता है, नियम रखने पड़ते हैं। अदरवाइज किस आधार से आप डिसीजन ले रहे हैं लाइफ में, बस अपने जीभ के आधार से? आपने अपनी प्रकृति को समझा है, इसको क्या चाहिए चलने के लिए, कितना पेट्रोल चाहिए इसको? नहीं समझा है तो पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालेंगे तो कैसे चलेगी, डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे तो कैसे चलेगी? एक समझ से काम लेना है ना, हर कार्य में, कर्म में समझ से काम लेना। बाबा ने हमको ज्ञान क्यों दिया है? ऐसे नहीं कि अपने इच्छाओं से बस मन की भावनाओं के आधार से चलना है, नो वे। हम रतनमोहिनी दादी जी के साथ टूर पे गए थे तो लीला बहन तो बहुत अच्छी खाना पकाती है, तो बहुत ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट फुलके बनाती थी, तो गरम गरम फुलके मैंने तो दो खा लिया, और दादी हमारे बाजू में बैठे थे तो दादी जी ने केवल डेढ़ रोटी खाई, वन एंड हाफ। वो भी देखो एक फुलका इतना साइज का है, इतना बड़ा भी नहीं है। तो फिर मैंने दादी को बोला, दादी आपने डेढ़ रोटी खाई, मैंने दो खाए, आप एक और आधा खा लो ना, इतना छोटा सा टुकड़ा ही है ना, सब्जी बची है, हो जाएगा। तो दादी क्या बोलती है, नहीं मैंने अपनी प्रकृति को समझा है कि इसको चलाने के लिए इतना पेट्रोल चाहिए, मैं और ज्यादा डालूंगी तो मेरा पेट खराब हो जाएगा और फिर दिमाग भी खराब होगा साथ में, तो मैं दादी क्यों अपने आप को इतना कष्ट देवे। दादी ने अपनी प्रकृति को समझ लिया, क्या कितना चाहिए, कौन से टाइम पे चाहिए, यह है ज्ञानी तो आत्मा की निशानी, कि एक लॉ एंड ऑर्डर में चले हर बात का, समझ से काम लेकर के हम चलते हैं, ना अपने बस मन मर्जी से, अपनी भावनाएं से इमोशनल होकर के चले। ये क्या है, ये जैसे गुलामी जीवन है, आपकी दो इंच की जीभ आपको चला रही है, आपकी आंखें आपको चला रही है, आप कर्मेंद्रिय वश होकर के चल रहे हो, इसको हम कहेंगे इमोशनल स्टेट। समझ में आई बात? और हमको बनना है क्या? स्वराज्य अधिकारी बनना है, विश्व राज्य अधिकारी बनना है। और आप अपने 2 इंच के जीभ के ऊपर भी कंट्रोल नहीं ले सकते? आदत बनी है ना, कर्मेंद्रियों के वश चलना एक आदत बन गई है। बाबा ज्ञान क्यों देते? क्योंकि हर टाइम पे बाबा की याद में कुछ करेंगे तब कर्मेंद्रिय कंट्रोल में आएंगी, ज्ञान से काम लेंगे तब आपके कर्म श्रेष्ठ बनेंगे। इसमें फिर धीरे धीरे जैसे हम नियम बनाते हैं जीवन में, ज्ञान तो बहुत लोग सुनते हैं, आपको इतने ढेर क्लासेस मिल रहे हैं कि आपके पेट में और दिमाग में कॉन्स्टिपेशन हो चुका है। मैं आपको बताऊं, याद कितना आता है, याद में से कितना धारण होता है प्रैक्टिकल में, आप बताओ मुझे। ये कोई भक्ति मार्ग नहीं है, सुनते रहो कनरस होते रहो। ज्ञान मार्ग माना स्व परिवर्तन का मार्ग। आप 1-2 चीज भी लेंगे ना और उसमें पूरा जोर लगा करके खुद में परिवर्तन लाएंगे, इतनी संतुष्टता सेटिस्फेक्शन मिलती है, इतनी मजबूती आती है अंदर की। क्योंकि जब तक हमने कई बातों का नियम नहीं बनाया है तब तक हम ऐसे ही कर्मेंद्रियवश चलेंगे। अभी समय की सीमा को देख करके मैं यहां विराम देती हूं। कहानियां तो बहुत है लेकिन भाव तो समझे ना आप। दस मिनट और है क्या? अच्छा, किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? सॉरी, रॉन्ग है। हाँ, अच्छा, आपको है ना माइक लेना पड़ेगा, इनको माइक दो ना, मुझे आधा प्रश्न सुनाई दिया ये वाला।
हंड्रेड % रॉन्ग रहते हैं इन एवरी सेंस। वे मात्र अच्छे होने का ढोंग करते, 6 महीने तक, साल भर तक, वो कई लोग ढोंग किया वो अच्छे भी बन जाते हैं। व्हाट इज दिस?
किस बात में रॉन्ग है?
इन एवरी सेंस। भाई ओम शांति में आते हैं तो समझ जाओ पहले रांगते हैं, या बाहर के लोग भी शराब पीने में, तरुण में, सच बोलने में, झूठ हर और लोगों
को एग्जांपल दो,
चापलूस होते हैं। हाँ। लेकिन वो सच्चाई का ढोंग करते हैं फिर सच्चे भी बन जाते हैं 6 महीने साल भर बाद।
तो अच्छी बात है ना। इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ? बुरे से अच्छा बनना ही है तो ये
नहीं,
तो
सिर्फ ढोंग करते हैं, ढोंग में अच्छे बन जाते हैं।
नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है। मैं आपको बताऊं, सुनो, अंदर कुछ आत्मा में कुछ है सच्चाई, ऐसे परिवर्तन आप नहीं हो सकते हैं। जब तक एक शुद्ध इच्छा नहीं होती है अंदर से कि मुझे अपने आप को बदलाव करना है। चलो क्या होता है, लौकिक दुनिया में कोई भी विधि अपनाते हैं, ब्राह्मण जीवन में हमारे पास श्रीमत है, विधि पूर्वक हम खुद को स्व परिवर्तन करते हैं। उनके पास विधि नहीं है लेकिन अच्छे क्यों बनते हैं? क्योंकि अंदर कुछ एक अंश मात्र एक अंदर के प्योर संकल्प है, प्योरिटी है, उस प्योरिटी के आधार से वो अच्छे बनते हैं। उनको वो पवित्रता चाहिए। जब आप अपनी पवित्रता को छोड़ देते हैं ना, आप कभी भी कोई भी बात में परिवर्तन नहीं ले आ सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देती हूं। हम जब लंदन आए 1991 में आए, तो हमारा यूनिवर्सिटी का, उस समय यूनिवर्सिटी के लिए आए थे, लेकिन उसके पहले एक साल हमको एक स्पेशल स्कूल में डाला गया था, कॉलेज में डाला गया था। तो हमने देखा कि हम और हमारे भाई दोनों केवल एशियंस थे, और मैंने कभी मेरी जिंदगी में रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन महसूस नहीं किया है। तो उस स्कूल में, कॉलेज में बहुत सारे थे, तीन खास करके थे, जो पता नहीं इनका व्यवहार कैसा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो हमारे साथ क्यों ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, हालांकि हमने कुछ किया ही नहीं, हम जानते भी नहीं है इनको। लेकिन मुझे पता चला बाद में, मुझे ये भी भान नहीं था कि मैं इंडियन हूं, इंडियन होने के वजह से ये लोग ऐसे कर रहे हैं। बहुत बातें हुई इस समय, और मुझे याद है मेरा सवेरे का योग, अमृत वेले के योग के बाद मैं जब बाबा को लिखती थी, तभी मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि मैं इन लोगों से दुख क्यों ले रही हूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये लोग क्यों ऐसे व्यवहार कर रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो उनको भी समझ में नहीं आता होगा ना, वो क्यों ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि ये व्यवहार तो समझ के बाहर है। तब मुझे ये रियलाइजेशन हुआ, अरे ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो शायद उन्हों के जीवन में भी कुछ कष्ट आया हुआ होगा ना, कुछ पेन है, कुछ दुख है, इसलिए तो ये ऐसा करते हैं ना, लेकिन नॉर्मल व्यक्ति ऐसा नहीं करता। तो मेरी धीरे धीरे जो अंदर, जो जैसे क्या कहेंगे वो, क्यों ऐसे हो रहा है, वो परिवर्तन होकर के एक रहम पैदा हुआ मेरे दिल में कि अरे मेरे पास तो बाबा है, इनके पास तो बाबा भी नहीं है, और बेचारे के जीवन में कैसा जीवन होगा जो ऐसा व्यवहार करते हैं, कुछ ऐसे कुछ वश है, कुछ प्रभाव है उनके जीवन में। तभी मैंने क्या शुरू किया, प्रोजेक्ट शुरू किया। मैंने बोला मेरे पास बाबा है, बाबा प्यार का सागर है, रहम का सागर है, तो मेरा फर्ज क्या है पूर्वज होने का। तभी मैंने सवेरे का 6 से 6:30 बजे का योग, ठीक है, सेंटर में 6 से 6:30 बजे का योग मैंने खास इनको गुड विशेष देने के लिए, वो योग मैंने 1.5 मास तक चलाया। और हर रोज मैं बाबा से प्यार लेती थी, अरे आपके जीवन में प्यार हो, शुभ भावना हो, जो भी आपके जीवन में कुछ कर्म बंधन का कुछ प्रॉब्लम हो वो भी चुप तो हो जाए, फिनिश हो जाए। इतनी दिल से वो भावनाएं मैं प्रकट कर रही थी, मुझे इतना अच्छा लगता था। हर रोज जैसे एक प्यार का रेड कारपेट बिछा देती थी इन आत्माओं के लिए। और आप मानो नहीं, 1.5 मास के अंदर जो 3 व्यक्ति थे जो मेरे बिल्कुल अगेंस्ट थे, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड बन गए। एक तो फिर खैर कॉलेज छोड़ करके चला गया, दूसरे 2 आज दिन तक हमारे फ्रेंड्स हैं। और क्या है, मेरी वृत्ति बदली, क्योंकि मुझे ये गंदगी नहीं चाहिए। कोई व्यक्ति कुछ रॉन्ग कर रहा है, सो व्हाट, अपना पार्ट बजा रहा है, मेरा दिल मेरे हाथ में है ना, और मुझे ये चीज अंदर नहीं चाहिए, मुझे ईश्वर का प्यार चाहिए मेरे दिल में। तो ये मेरी अंदर की पवित्रता की एक शुभ भावना थी खुद के प्रति, तब जाकर के मैंने अपने आप को परिवर्तन किया ना। ऐसे परिवर्तन नहीं हो सकते हैं, योर प्यूरिटी विल वर्क फॉर यू। इवन 1% प्यूरिटी है, ताकत है उस प्यूरिटी में। आप उस प्यूरिटी को स्पॉटलाइट करके कोई व्यक्ति उसको बोलेंगे बार बार, ये आपके अंदर है, आपके अंदर है, वो स्मृति बनेगी, अवश्य बदलेगा वो व्यक्ति। लेकिन हमारी दृष्टि में प्रॉब्लम है, क्योंकि हम कांटे देखते हैं, हम प्रॉब्लम देखते हैं, हम कमी देखते हैं, खामी देखते हैं, और वही हमारे लिए एक बैरियर बनता है। हमारी स्व परिवर्तन होने में हमारी दृष्टि बैरियर डाल देती है। जी
ओम शांति दीदी। हम अब सब परिवर्तन करना चाहते हैं, तकरीबन जितने भी भाई बहन बैठे हैं, पर नहीं कर पाते। इसमें से जो हमारी तीन सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, मन बुद्धि और संस्कार, इसमें हम किस पर ज्यादा जोर दें कि भाई वो हमारी धारणाएं अच्छी तरह से गहराई में चली जाए। नहीं, टेम्परेरी अब बदल गए हम, कुछ जाने के बाद फिर उसी लाइन पर।
मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन मैं दूसरे एंगल से इसका जवाब देती हूँ। देखो, आप अपने जीवन में देखो प्रैक्टिकल रूप से, जब परिवर्तन आया है कुछ बात का, तो उसके पीछे क्या था? क्या था? अच्छा, कितना सक्सेस मिलता है इसमें? हाँ, ये बात। नेचुरल जो परिवर्तन आता है किस आधार से आता है? प्यार से आता है, प्रेरणा से आती है, और ये संबंध से मिलता है। फर्स्ट पॉइंट कि बाप, टीचर, सतगुरु का संबंध, तीन का संबंध पक्का होना चाहिए। ये संबंध से ही आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार लाइन में आती है, और बाकी का संबंध मसाज करते हैं आत्मा को। माँ, जैसे माँ की गोद में बैठ करके बस थोड़ा राहत मिले, परिवर्तन नहीं होता है। फ्रेंड को दिल खोल करके बातें बताओ, परिवर्तन नहीं होता है, थोड़ा हल्का हो जाते हैं। लेकिन रियल परिवर्तन होता है जब बाप के श्रीमत पे चलते हैं, टीचर के डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, गुरु की कृपा लेते हैं, ऐसे श्रेष्ठ कर्म करते हैं। ये तीन ही संबंध में आत्मा का परिवर्तन हो सकता है। अभी आप अपने आप को देखो, कहां तक बाप की श्रीमत पे चल रही हूं, बुद्धि उस श्रीमत अनुसार चल रही है? श्रीमत पे नहीं चल रही माना उस संबंध में कमी है। आपने ईश्वर को बाप के रूप में अपनाया नहीं है ना, या टीचर के रूप में अपनाया नहीं है ना। बाप के रूप में अपनाएंगे तो मैं एक छोटा बच्चा हूं, मेरा कुछ है ही नहीं ना, बाबा को दे दो ना सब कुछ, बेफिक्र बन जाओ, मन हल्का रहता है, बाबा बैठा है ना। टीचर है तो टीचर की शिक्षाएं, अच्छे स्टूडेंट बनने की भावना रहती है, तब बुद्धि फोकस रहती है पढ़ाई पे। और गुरु से श्रेष्ठ संस्कार की प्रेरणाएं मिलती हैं। तो हमारी पूरी अंदर की जो डायनामिक है, मन, बुद्धि, संस्कार, वो हम खुद नहीं कर सकते हैं परिवर्तन, संबंध से परिवर्तन होता है। संबंध में कोई भी कमी है ना, तो आपके मन, बुद्धि, संस्कार ऑर्डर में नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस संबंध में कमी है उस संबंध में माया आएंगी और आपको दूसरे के प्रति आकर्षण करेंगी, और आपका मन, बुद्धि, संस्कार उस प्रति अधीन हो जाएगा। आपके हाथ में नहीं है, आप अधीनता से चल रहे हैं, अधिकारी बन करके नहीं चल रहे। इसीलिए फुल ट्रांसफॉर्मेशन पावर चाहिए आपको, तो फुल संबंध की शक्ति जरूरी है, फुल संबंध, तब जाकर के फुल राइट्स लेते हैं। समझ में आई बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चेक करें कहां पे बाबा के साथ सर्व संबंधों का रस ले रही हूं, ले रहा हूं, कहां पे गैप है, कहां पे किसी और थर्ड व्यक्ति को बिठाया है अंदर, तब आपके मन बुद्धि संस्कार गुलाम बने हैं और आप उस गुलामी में चल रहे हैं। बाबा बाबा बोल रहे हैं और ये भी महसूस नहीं किया है कि आप गुलाम बन गए हैं, क्योंकि ये मंत्र नहीं है एक बाबा दूसरा ना कोई, एक बाबा एक और कोई, वो मंत्र पक्का किया है। अदरवाइज एक बाबा दूसरा ना कोई होता ना, तो आप कभी भी अपने मन बुद्धि पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, आकर्षण करने वाला कोई है नहीं, तो प्रॉब्लम कहां से है? ठीक है, चलो क्या बोला? देखो नियम तो बाबा खुद के प्रिंसिपल्स, लाइफ के प्रिंसिपल्स होते हैं। मैं एक दादी का उदाहरण बताती हूँ। लास्ट तक लंदन में दादी का एक नियम था, इकोनॉमी में चलना है, एक नामी होकर के इकोनॉमी में चलना है, एक नियम था। नियम अलग अलग धारणाएं समझो, मीठा बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो, एक नियम बनाना होता है कई बातों का, तब जाकर के आपके कर्मेंद्रिय कंट्रोल में रहेंगे। दादी ने लास्ट तक खुद के लिए गाड़ी नहीं ली थी लंदन में, नियम पालन किया ना। लास्ट तक हमको कहती थी मेरे अंतिम संस्कार में मुझे कोई भी नहीं चाहिए, ऐसा ही हुआ, कोई नहीं आ पाया, केवल 6000 रुपया का खर्च हुआ, वो भी वो चंदन का हार होता है ना उसके ऊपर। वो जैसा चाहती थी, जिस नियम पे वो सारी जिंदगी पे चली, लास्ट में ड्रामा ने भी सहयोग किया उस नियम को पालन करने के लिए। अदरवाइज आप सोचो, आप अपने नियम के साथ खेल करते हो ना, बस इकोनॉमी कभी कभी करते हैं, तो फिर आप सोचो क्या होता जब पूरा विश्व यहां करके खड़ा होता अंतिम संस्कार में, हर एक की फ्लाइट टिकट, आप सोचो, और वो दादी के अकाउंट में जाता। तो आप थोड़ा एग्जामिन करो मेरा प्रिंसिपल्स क्या है। मैंने ज्ञान तो समझा है, ज्ञान को कहां तक मैं प्रिंसिपल बनाया है जीवन में। ठीक है, थैंक यू। चलो एक मिनट बाबा की याद में रहे।
बहुत बहुत धन्यवाद गोपी बहन जी, आपने बहुत ही अच्छे से ब्राह्मण जीवन की सूक्ष्म धारणाओं को बताया, क्योंकि मोटे रूप से बहुत अच्छे से हम रटते रटाते हैं, लेकिन एक एक बातों को कैसे जीवन में लाना है। और सच में देखा जाए, हमारी दादी जी, दादी जानकी जी ने खुद अपना जीवन जैसे बनाया, उनके साथ वालों को भी ऐसे ही बनाया। जब हम गोपी बहन जी से सुनते हैं तो लगता है ये जो बोल रहे हैं, कर रहे हैं, प्रैक्टिकल उनकी जीवन की धारणाएं हैं। तो जो भी बताया वो प्रैक्टिकल उनके स्वरूप में है, इस कारण से सबको ये बातें बहुत अच्छी भी लगी। और जो कमियां हैं आज निवारण करके हम अपने आप को बहुत ही बारीकी से तराश के सच्चे ब्राह्मण बन करके आज सतगुरु के रूप में बाबा को पत्र लिख करके अपने में परिवर्तन लाने का दृढ़ संकल्प करेंगे।